स्वर्ग में प्रभु का जीवित वचन। सृष्टि निर्माता भी है यही वचन।
नमस्कार श्रोताओ, बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। जैसा कि आपको मालूम है कि इन दिनों हम पवित्र शास्त्र बाइबल के पुराने नियम में से नीति वचन नामक पुस्तक का विस्तार पूर्वक अध्ययन कर रहे हैं और हमें विश्वास है कि इस पुस्तक के द्वारा आपको आत्मिक लाभ मिल रहा है। तो आइए आज के इस बाइबल अध्ययन में हम सम्मिलित हों, लेकिन इससे पहले सुनते हैं एक मधुर संगीत रचना।
महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। पूछेंगे तब वो धर्मी सब, पूछेंगे तब वो धर्मी सब, हमने ये सब कब किया। तुझको खाना दिया, तुझको पानी दिया, हमने बता कब किया। यीशु कहेगा सच कहता हूँ, यीशु कहेगा सच कहता हूँ। छोटे से छोटे भाई के साथ तुमने जो भी किया, था वो मुझसे किया। हाँ तुमने जो भी किया, था वो मुझसे किया। उनको खाना दिया, मुझको दिया। उनको पानी दिया, मुझको दिया। उनको खाना महिमा में राजा आएगा, न्याय करेगा कहेगा। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। स्वर्ग के अधिकारी हो जाओ, मुझसे हरा शीश ले जाओ। जब मैं भूखा था तुमने खाना दिया, जब मैं प्यासा था तुमने पानी दिया। था मैं परदेसी तुमने घर में रखा, जब मैं बेहाल था तुमने कपड़ा दिया। हाँ मैं बीमार था तुमने देखा मुझे, कैद खाने में था मिलने आए मुझे। स्वर्ग जग के अधिकारी हो जाओ। मुझसे हर आशीष ले जाओ।
प्रिय मित्र, प्रभु यीशु के पवित्र और मधुर नाम में आप सबको मेरा नमस्कार। मैं कुशल पूर्वक हूँ और आशा करता हूँ कि आप सब भी परमेश्वर की निकटता में रहते हुए अपने जीवन में आनंदित हैं और फिर से एक बार आज परमेश्वर के वचन में से सुनने और सीखने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आप सभी श्रोता मित्रों का इस कार्यक्रम में फिर से एक बार स्वागत करता हूँ और विशेष करके अपने उन सभी नए मित्रों का जो पहली बार हमारे इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि हम इन दिनों बाइबल में से नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन कर रहे हैं और यह नीति वचन की पुस्तक प्रत्येक व्यक्ति के लिए है, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए, जवानों के लिए। और मैं आशा करता हूं कि आप जो नए श्रोता मित्र हैं, यह पुस्तक आपके जीवन के लिए भी लाभकारी होगा। तो मित्रों, इससे पहले कि आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ें, आइए हम सब प्रार्थना करें और परमेश्वर से आज के अध्ययन के लिए सहायता मांगें। हमारे जीवित और सामर्थ्य पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर समय के लिए जिसे आपने हम सबके जीवन में दिया है ताकि हम फिर से एक बार आपके जीवित और सच्चे वचन का अध्ययन कर सकें। इस समय जब हम नीति वचन की पुस्तक में से फिर से एक बार अध्ययन करते हैं, हमारी प्रार्थना है कि आप हमें से प्रत्येक को अपनी बुद्धि, ज्ञान और समझ प्रदान कीजिए। हमारे प्रत्येक श्रोता भाई बहनों को अपने शांति दीजिए, जो बीमार अवस्था में हैं, जो निराश हैं, जो चिंतित हैं, आप हर एक की सहायता कीजिए और विशेष करके आज के वचन से आप बोली और बातचीत कीजिए, आप मुझसे भी बातचीत कीजिए। हम सबको आपके हाथ में सौंप देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। मेरे मित्रों, पिछले अध्ययन में हम देख रहे थे कि परमेश्वर कुछ ऐसी बातें हैं जिससे वह घृणा करता है और वो सात बातें हैं। और आज हम अपने अध्ययन में आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नीति वचन 19 अध्याय से। तो आप मेरे साथ निकाल लीजिए नीति वचन अध्याय 19, उसका एक पद, जहां पर इस प्रकार से लिखा है, जो निर्धन खराई से चलता है वह उस मूर्ख से उत्तम है जो टेढ़ी बातें बोलता है। परमेश्वर ने हमें मना किया है कि किसी को मूर्ख न कहें, परंतु परमेश्वर का आत्मा कहता है, स्पष्ट है कि मानव जाति में अनेक मूर्ख हैं। नीति वचन 19 उसके 2 और 3 पद में लिखा है, मनुष्य का ज्ञान रहित रहना अच्छा नहीं, और जो उतावली से दौड़ता है वह चूक जाता है। मूर्खता के कारण मनुष्य का मार्ग टेढ़ा होता है और वह मन ही मन यहोवा से चिढ़ने लगता है। मेरे मित्रों, इन नीति वचनों में एक विचार दूसरे विचार का समर्थन करता है। यहाँ परमेश्वर की संतान और अन्य संतानों में परस्पर असमानता प्रकट की गई है। एक सत्य के मार्ग पर चलता है तो दूसरा उदंडता और अज्ञान के मार्ग पर, जिसे परमेश्वर मूर्ख कहता है। एक कहावत है, जहां अज्ञान परमानंद है वहां बुद्धिमान के लिए मूर्खता है, परंतु यह सच नहीं है। कभी कभी कलीसिया के अगुवे भी बाइबल के प्रति अपने अज्ञान पर घमंड करते हैं। मैंने बोर्ड सभाओं में सुना है, यह थियोलॉजी है, बाइबल की बात है, मैं इस बारे में अधिक नहीं जानता। मैं कहते कहते रुक जाता हूँ, आप क्यों नहीं जानते? आप एक परिपक्व मनुष्य हैं, आप कलीसिया के अगुवे हैं, आपको आत्मिक समझ इसमें होनी चाहिए। आत्मिक समझ में ऐसा अज्ञानी नहीं होना है। यहाँ पर लोग इस प्रकार की बातें करते हैं। मुझे किसी ने यह कहावत भेजी, बाइबल का जानकार अशिक्षित कभी नहीं हो सकता और बाइबल की शिक्षा नहीं जानने वाला कभी पूर्ण शिक्षित नहीं हो सकता। संसार इसे स्वीकार ना करे, परंतु मैं इस पर विश्वास करता हूँ, निश्चय ही एक परिपक्व विश्वासी बाइबल के विषय में अज्ञानी नहीं हो सकता। परमेश्वर के वचन का ज्ञान परमेश्वर की संतान का गुण है। नीति वचन की पुस्तक 19 अध्याय उसके 4 पद में लिखा है, धनी के तो बहुत से मित्र हो जाते हैं, परंतु कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। धनवान मनुष्य के अनेक मित्र होते हैं। उसके फ्रिज में सामान भरा हो और अलमारी में शराब की बोतलें तथा संगीत चलता हो तो उसके बहुत सारे मित्र बढ़ते जाते हैं। यह एक ध्यान देने योग्य बात है कि परमेश्वर का वचन परमेश्वर की संतान को गरीबों की खोज करने का आदेश देता है। स्मरण करें, याकूब इस विषय में क्या कहता है। याकूब की पत्री 2 अध्याय उसके 2 और 3 पद में, यदि एक मनुष्य सोने के छल्ले और सुंदर वस्त्र पहने हुए तुम्हारी सभा में आए और एक कंगाल भी मैले कुचले कपड़े पहने हुए आए और तुम उस सुंदर वस्त्र वाले का मुंह देखकर कहो, तू वहां अच्छी जगह बैठ, और उस कंगाल से कहो, तू यहां खड़ा रह या मेरे पांव के पास बैठ। मेरे मित्रों, दुर्भाग्य से यह सच है कि आज हमारी कलीसियाओं में गरीब मनुष्य के साथ ऐसी ही समस्या है। मुझे एक गरीब दंपति ने बताया कि वे एक रूढ़िवादी बाइबल आधारित कलीसिया में आराधना के लिए गए। उनके साथ बहुत ही बुरा व्यवहार किया गया क्योंकि वे गरीब थे और उनके वस्त्र पुराने थे। मनुष्य का पुराना मनुष्यत्व अब भी काम करता है। मेरी पत्नी जब भी बाहर जाती है तो मुझसे पूछती है कि उसके कपड़े ठीक हैं। मेरे प्रियो, मनुष्य आज भी पुराने मनुष्यत्व के मनुष्यों में उठता बैठता है। वे गरीब को दूर करना चाहते हैं। परमेश्वर स्पष्ट कहता है, कंगाल के मित्र भी उससे अलग हो जाते हैं। आपको गरीब जानकर मनुष्य आपसे दूर हो जाएगा, परंतु परमेश्वर कहता है कि वह उससे प्रेम करता है। नीति वचन 19 अध्याय उसके 5 पद में लिखा है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह न बचेगा। देखिए पद 9 में भी यही लिखा है, झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह नष्ट हो जाता है। झूठा साक्षी बचेगा नहीं, वह पकड़ा ही जाएगा। उसे अपने वचनों का लेखा देना होगा और वह नष्ट भी हो जाएगा। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय उसके 8 पद में परमेश्वर यही कहता है। और तब हम पहले राजाओं की पुस्तक 21 और 22 में आहाब और इजिबेल ने नाबोत के विरुद्ध जो झूठे गवाह खड़े करके उसे पत्थरवाह करवा दिया था, इसके पश्चात उसका खेत ले लिया क्योंकि वह जीवित रहते अपना खेत नहीं बेच रहा था। आहाब सोच रहा था कि वह इस दुष्टता से बच जाएगा, परंतु एलियाह ने उससे कहा कि जिस स्थान पर नाबोत का लहू बहा है उसी स्थान पर कुत्ते उसका लहू चाटेंगे। मेरे प्रियो, आहाब ने सीरिया से युद्ध करने के लिए यहूदा के यहोशापात को अपनी ओर कर लिया और उसे राजसी वस्त्र पहनाकर स्वयं साधारण सैनिक के वस्त्रों में युद्ध करने के लिए निकला, परंतु किसी मनचले सैनिक ने हवा में तीर चलाया और वह तीर जाकर आहाब को लगा और वह मर गया। रथ चालक ने सामरिया के कुंड में जाकर रथ को धोया और पहले राजा के पुस्तक 22 अध्याय उसके 38 पद में व्यक्त परमेश्वर के वचन के अनुसार कुत्तों ने उसका लहू चाटा। आप कहेंगे कि यह बड़ी ही भयानक बात है, परंतु मेरे मित्रों, झूठ बोलना, झूठी गवाही देना, अफवाहें उड़ाना परमेश्वर की दृष्टि में भयानक अपराध है। परमेश्वर इससे घृणा करता है, जैसे कि हमने पिछले अध्ययनों में देखा है। झूठा साक्षी निर्दोष नहीं ठहरता और जो झूठ बोला करता है वह ना बचेगा। नीति वचन 19 के 6 पद में लिखा है, उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं और दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। उदार मनुष्य को बहुत से लोग मना लेते हैं। आज हम अपने नेताओं के समक्ष अपनी मांग रखते हैं, दानी पुरुष का मित्र सब कोई बनता है। यह अति सत्य है। जब तक आपके पास देने को है तब तक उसके पास बहुत सारे मित्र भी होंगे। नीति वचन 19:7 में लिखा है, जब निर्धन के सब भाई उससे बैर रखते हैं तो निश्चय है कि उसके मित्र उससे दूर हो जाएं। वह बातें करते हुए उनका पीछा करता है परंतु उनको नहीं पाता। जहां तक घृणा की बात है, गरीब से कोई घृणा नहीं करता है क्योंकि उससे कोई संबंध रखता ही नहीं है, वे उसे अनदेखा करते हैं। एक समृद्ध मनुष्य अपने मित्र को आता देख अपनी पत्नी से कहता है, घर के भीतर आ जाओ कि वह सोचे हम घर में नहीं हैं। घृणा का अर्थ यही है, गरीब इस संसार में स्थान नहीं पाता है। मेरे मित्रों, हम नेताओं से सुनते हैं कि वे कुर्सी पर बैठने के बाद गरीबी हटा देंगे कहते हैं, परंतु होता यह है कि वे कर बढ़ा देते हैं। मेरे विचार में तो समस्याएं इतनी अधिक हैं कि मनुष्य के पास समाधान नहीं है। क्या आप जानते हैं कि हमें किसकी आवश्यकता है? हमें ऐसे मनुष्य की आवश्यकता है जो कहे, मेरे पास समस्याओं का समाधान नहीं है। समाधान के लिए हमें परमेश्वर को खोजना है। हम उससे प्रार्थना करें, उसकी सेवा करें। जी हाँ, हम सब कुछ करके देख चुके हैं, अब हम परमेश्वर से एक बार कहकर तो देखें, कहने में क्या बुरा है। टीवी देखने की अपेक्षा परमेश्वर को देखना अधिक उचित है। हमने सबकी प्रतिज्ञाएं सुनी है परंतु व्यर्थ रही। हमें परमेश्वर के पास आकर उसकी बात सुनना है। नीति वचन 19:13 में हम पढ़ते हैं, मूर्ख पुत्र पिता के लिए विपत्ति ठहरता है और पत्नी के झगड़े रगड़े सदा टपकने के समान है। मेरे प्रियो, एक नीति वचन में हमने देखा कि पत्नी पा लेना एक अच्छी बात है क्योंकि वह उसकी अर्धांगिनी है और उसकी सहायक है, उसकी सेविका नहीं है। अब मैं नहीं जानता कि मनुष्य के या मनुष्य में यह धारणा कहां से समा गई कि पत्नी को पति की आज्ञा का पालन करना है। यह अवश्य कहा गया है कि पत्नी अपने पति के अधीन रहे यदि वह एक अच्छा पति है, अन्यथा परमेश्वर नहीं कहता कि वह उसके अधीन रहे। यह निर्देश केवल विश्वासी दंपतियों के लिए है क्योंकि वह पति उससे वैसा ही प्रेम रखेगा जैसा प्रभु यीशु कलीसिया से रखता है। ऐसे पति के अधीन तो पत्नी स्वयं ही हो जाएगी। इन नीति वचनों को पढ़कर हंसी भी आती है। उस पुरुष के बारे में सोचे जिसका पुत्र तो मूर्ख है ही, पत्नी भी झगड़ालू है, घर में उसकी क्या दशा होगी। यही कारण है कि सही पत्नी पाना कैसा महत्वपूर्ण है। नीति वचन 19:14 में लिखा है, घर और धन पुरखाओं के भाग से, परंतु बुद्धिमती पत्नी यहोवा ही से मिलती है। यदि आपकी पत्नी अच्छी है तो यह परमेश्वर का वरदान है। आपको उसके लिए परमेश्वर का आभारी होना है। क्या आपने कभी ऐसा किया है? परमेश्वर ने आपको एक अच्छी पत्नी दी है तो आपको परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए। मेरे युवाओं, क्या आपको एक अच्छी पत्नी चाहिए? लड़की का पिता आपको अच्छी पत्नी नहीं देता और नहीं दे सकता है, और न ही आपके माता पिता आपको अच्छी और भली पत्नी दे सकते हैं। आपको सिर्फ परमेश्वर ही भली पत्नी दे सकता है। इसलिए आज से ही आप अपनी अच्छी पत्नी के लिए प्रार्थना करें। बहुत से पिता तो अपनी पुत्रियों से हाथ धोने के लिए उनका विवाह कर देते हैं, परंतु हमारे स्वर्गीय पिता के पास अनेक अच्छी लड़कियां हैं कि आपको पत्नी दे, उसके साथ संबंध बनाए रखें और वह आपको एक अच्छी पत्नी तक ले जाएगा। जी हाँ, वह आपको एक अच्छी पत्नी देना चाहता है। यह एक व्यवहारिक नीति वचन है। क्या आप नहीं चाहते कि आपको एक भली पत्नी मिले? नीति वचन 19:18 में लिखा है, जब तक आशा है तो अपने पुत्र की ताड़ना कर, जानबूझकर उसको मार न डाल। बच्चे छोटे होते हैं तब ही अनुशासन सिखाना आरंभ कर दें, रुके नहीं, अन्यथा देर हो जाएगी। जैसे कहावत है कि जब तक बांस नरम है आप उसको जैसा चाहे बना सकते हैं, जब वह कठोर हो जाएगा तब आप उसे कुछ भी नहीं कर सकते, अन्यथा टूट जाएगा। एक पुरुष जिसने जीवन में देर से उद्धार पाया मुझे बताया, मेरी पत्नी और मैंने अभी कुछ समय पहले ही उद्धार पाया है और हम परमेश्वर के आभारी हैं, परंतु हमारे बच्चे खोए हुए हैं। हम शैतान के समान थे और आज वही हम अपने बच्चों में देखते हैं। वे अपने बच्चों को सही समय उचित शिक्षा नहीं दे पाए। सिर्फ इनका ही नहीं, हम मसीही परिवारों में भी कई बच्चे ऐसे ही हैं, क्योंकि माता पिता परमेश्वर से प्रेम नहीं कर पाते हैं, जिस कारण वे बच्चों को भी सही शिक्षा नहीं दे पाते हैं। और यही कारण है कि आज मसीही बच्चे परमेश्वर की निकटता में आने के बजाय दूर होते चले जा रहे हैं। मेरे प्रियो, बचपन से ही आरंभ करें कि आपके बच्चे शिक्षा को प्राप्त करने पाएं। बच्चे के रोने पर ध्यान न दें। दूसरी ओर बच्चों के प्रशिक्षण में पिता सावधान भी रहे। बच्चों के साथ निर्दयता करने का अधिकार किसी को नहीं है। डॉक्टर आयरन साइट के अनुवाद में ऐसा है, आशा है तब तक अपने बच्चे की ताड़ना कर, परंतु उसे मार डालने के लिए निश्चय न कर। अनुशासन से डरे नहीं, परंतु निर्दयता से नहीं, प्रेम से। निर्दयता बच्चे की आत्मा को आहत करती है। निर्दयी माता व पिता को तो कानून भी रोके तो अच्छा होगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने विश्वासियों को विशेष निर्देश दिए हैं। इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 1 पद में वह संतान से कहता है कि वे माता पिता की आज्ञा माने, परंतु जब वह पिता से कहता है इफिसियों के पत्र 6 अध्याय उसके 4 पद में कि वह अपने संतान को रिस ना दिलाए, तो उसके कहने का अर्थ है क्रोध में आकर उन्हें दंड ना दें, क्योंकि वे समझते हैं। दूसरी ओर ऐसी स्थिति में आप उन्हें हानि भी पहुंचा सकते हैं। परमेश्वर की आज्ञा है इफिसियों के पत्र 6 अध्याय के 4 पद में कि आप उन्हें प्रभु की चेतावनी देते हुए उनका पालन पोषण करें। यह प्रभु का अनुशासन और शिक्षा है। नीतिवचन 19 उसके 21 पद में लिखा है, मनुष्य के मन में बहुत सी कल्पनाएं होती हैं, परंतु जो युक्ति यह करता है वही स्थिर रहती है। मनुष्य के पास अनेक व्यवस्थाएं हैं और बहुत सारी व्याख्याएं हैं और समाधान भी होंगे, परंतु परमेश्वर ही आपको सही सुझाव देगा। मनुष्य कंप्यूटर बना सकता है, परंतु परमेश्वर ही उसमें बुद्धि डालेगा। मेरे प्रियो, नीति वचन 19 उसके 22 पद में लिखा है, मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है और निर्धन जन झूठ बोलने वाले से उत्तम है। यह बड़ी विचित्र बात है कि मनुष्य कृपा करने के अनुसार चाहने योग्य होता है। आप ऐसे कितने लोगों को जानते हैं, अर्थात दयावान, उदार और अच्छा चरित्र के लोग। अब एक गरीब मनुष्य जो अपने परिजन के पास आकर कुछ वर्ष ठहर जाए, वह किसी झूठे से अच्छा है। नीतिवचन 19 के 23 पद में लिखा है, यहोवा का भय मानने से जीवन बढ़ता है और उसका भय मानने वाला ठिकाना पाकर सुखी रहता है, उस पर विपत्ति नहीं पड़ने की। परमेश्वर का भय मानने का अर्थ यह नहीं कि आप लगातार भय में निर्वाह करें। नीतिवचन से स्पष्ट है कि परमेश्वर का भय मानने का अर्थ है आप संतोष के साथ निश्चिंत रहें। आप उसे जानें, उसकी बात जो है उसे ग्रहण करें और उसका अनुसरण करें। इस प्रकार आप संतोष के साथ निश्चिंत रहेंगे। नीतिवचन 19 के 24 पद में लिखा है, आलसी अपना हाथ थाली में डालता है, परंतु अपने मुंह तक कौर नहीं उठाता। यह एक और अति रोचक नीतिवचन है। आलसी मनुष्य थाली में हाथ डालेगा, परंतु कौर को मुंह तक नहीं लाएगा। मैंने एक बार एक चुटकुला पढ़ा। एक अमीर आदमी का एक आलसी बेटा था। वह नहीं चाहता था कि वह अपने खाने के लिए डाइनिंग हॉल में आए। उसने अपने पिता से कहा, पिताजी आप कुछ ऐसा करें ताकि मैं घर बैठे ही सब कुछ कर सकूं। उसके पिता धनवान थे, उन्होंने सारी सुविधाएं उपलब्ध कर दी। ऐसा तरीका लगाया कि एक बटन दबाते ही खाना उसके पास आ जाएगा और वह खा सकता है। जब उसके पिता ने सारे सिस्टम को उसे बताया तो उस लड़के ने कहा, पिताजी इस बटन को कौन दबाएगा? मेरे मित्रों यहाँ पर देखिए कि इसके लिए सारा सिस्टम तैयार कर दिया गया है और उसे सिर्फ बटन दबाना है, लेकिन वह कहता है पिताजी इस बटन को कौन दबाएगा। मेरे मित्रों कहने का अर्थ यह है कि यह इतना आलसी है कि वो बटन को दबाने के लिए भी एक नौकर चाहता है। आज हम में से कई लोग इसी प्रकार का आलस्यपूर्ण जीवन जी रहे हैं। आत्मिक क्षेत्र में तो ऐसा प्राय देखने को मिलता है। परमेश्वर का वचन हमारा भोजन है, लेकिन हम इसे नहीं खाते हैं। मैं ऐसे विश्वासियों को भी जानता हूं जिनके पास बाइबल तो है, परंतु उसे पढ़ने में वे अति आलसी हैं। बताते हैं कि हमारे घर में बाहर का बाइबल है, बहुत अच्छा प्रिंटेड बाइबल है, लेकिन उसे कभी खोल करके नहीं देखते हैं और ना ही पढ़ते हैं। भोजन घर में है, लेकिन खाने वाला ऐसा ही बैठा है, क्योंकि वह आलसी है। नीति वचन 19 उसके 29 पद में लिखा है, ठट्ठा करने वालों के लिए दंड ठहराया जाता है और मूर्खों की पीठ के लिए कोड़े हैं। दंड आने वाला है। परमेश्वर दोषी पर दया नहीं दिखाएगा। पाप का आनंद क्षणिक होता है, परंतु उसका फल अनंतकालीन होता है। मेरे मित्रों अभी भी आपके पास में मौका है कि आप परमेश्वर के वचन को पढ़ें, उसको ग्रहण करें और उसके अनुसार जीवन जिएं। कल आप ये ना कहें कि मैं नहीं जानता था, मैं नहीं जानती थी, अन्यथा मैं बदल जाती, अन्यथा मैं ऐसा करता, मैं वैसा करता। इससे पहले कि परमेश्वर का कोड़ा आपके ऊपर में पड़े, आप सचेत हो जाइए। परमेश्वर का वचन आज मुझे और आपको यही शिक्षा देता है। मेरे मित्रों यहाँ पर आज हमारे अध्ययन का समय समाप्त होता है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज के इस अध्ययन के द्वारा आपने एक सही निर्णय अपने जीवन में लिया है। प्रभु इस वचन के द्वारा आप सबको आशीष दे और आप सबकी सहायता करे।
प्रिय श्रोताओ, अभी आप सुन रहे थे बाइबल अध्ययन कार्यक्रम सत्य वचन। हम आशा करते हैं कि आज के इस कार्यक्रम से आपको आत्मिक लाभ मिला होगा। यदि आप परमेश्वर के बारे में और अधिक जानना चाहते हैं, तो हमारे पास नया नियम एवं पवित्र शास्त्र बाइबल उपलब्ध है। इन्हें प्राप्त करने के लिए आप हमें इस पते पर लिख सकते हैं, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, नई दिल्ली 110019। पता एक बार फिर सुन लीजिए, कार्यक्रम सत्य वचन, TWR, पोस्ट बॉक्स नंबर 4310, न्यू दिल्ली 110019। और हाँ श्रोताओ, याद रखें कि पत्र लिखते समय आपका नाम और पता साफ साफ लिखा होना चाहिए। इसके अलावा आप हमसे टेलीफोन के माध्यम से भी बातचीत कर सकते हैं, जिसमें हमारे काउंसलर या सलाहकार आपको सलाह देंगे। तो नोट कीजिए, हमारा मोबाइल नंबर 9958820414। याद रखें 9958820414। और हमारा दूसरा नंबर है 09651433397। याद रहे 09651433397। इसके अलावा आप हमसे ईमेल के द्वारा भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है hindittb@twr.in, hindittb@twr.in। श्रोताओ, इस कार्यक्रम को आप हमारे वेबसाइट radio882.com पर भी सुन सकते हैं। इस वेबसाइट radio882.com के बारे में अपने मित्रों को भी सूचित कर दें। और अब इसी के साथ हमारे कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए, नमस्कार।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है,
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है।
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है,
यीशु को मैं पहने हूँ, मुझ में वो जिंदा है।
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
यही मेरी ताकत है, ये नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है,
कभी नहीं भूलना है, कभी नहीं भूलना है।
यीशु मेरे साथ है, यीशु मेरे अंदर है, यीशु को मैं पहने हूँ।